فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران گرامی، اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کا تعارف کرایا ہے اور ان پر جو انعام و اکرام ہوگا اور جو نعمتیں اللہ انہیں عطا کریں گے، اللہ نے اس کے تعلق سے وضاحت فرمائی ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں، نبوت ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے اور اللہ تعالی خود ہی بندے کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو نبی بناتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوشش کرے اور نبی بنے. نبی کا بننا اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں اور نبی بناتے ہیں. لیکن نبوت کے بعد ولایت ہے. ولایت یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بڑا مقام ہے. ہر شخص کوشش کر کے، اللہ سے توفیق مانگ کر ولی ہو سکتا ہے. ولایت کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا اور نہ اس کو خاص کیا، بلکہ ہر مسلمان ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. نبیوں کے بعد اولیاء اور اللہ کے ولیوں کا نمبر ہے اور تمام صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں، تابعین اللہ کے اولیاء ہیں، تبع تابعین اللہ کے اولیاء ہیں. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبیوں کے بعد ولیوں کا مقام ہے اور ولیوں میں فلاں سب سے بڑے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے بعد بے شک ولیوں کا مقام ہے، لیکن ولایت کے اعلی درجے پر صحابہ فائز ہے اور اسی وجہ سے پوری امت متفق ہے کہ نبیوں کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل شخص ہیں، صرف اس امت کے نہیں بلکہ گزری ہوئی ساری امت میں بھی اور اس امت میں بھی، پوری امتوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. پھر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. तो सहाबियत सबसे आगे है और हर सहाबी अल्लाह का वली है। इसी तरह ताबईन और तबए ताबईन को भी समझिए। तबए ताबईन के बाद उलमा ने तमाम औलिया को एक दर्जे में रखा है कि उनमें कौन सबसे अफजल है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है। हकीकत तो अल्लाह ही जानते हैं, इसलिए कि उम्मत ये फैसला नहीं कर सकती कि औलिया में सबसे बड़ी सबसे बड़े वली फूला हैं, फिर फूला हैं, फिर फूला हैं। उम्मत को ये फैसला करने का इख्तियार नहीं। हां ये कह सकते हैं बड़े औलिया में एक हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, एक हजरत निजामुद्दीन औलिया रहिमहुल्ला है, एक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहिमहुल्ला है। ये बात कही जा सकती है जो बड़े औलिया हैं उनमें फूला हैं, फूला हैं, फूला हैं। हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह यकीनन जो कराइन हैं और जो उनकी सिफात हैं उन सिफात को देखकर हम इंशाअल्लाह ये कह सकते हैं वो अल्लाह के बड़े वली थे और अल्लाह के एक दोस्त थे। इसलिए कि वली का माना दोस्त ही का आता है। अल्लाह पर उम्मीद रखते हुए कह सकते हैं, इसलिए कि नबियों का ईमान पर होना कुरान करीम से साबित है और सहाबा कराम का मोमिन होना कुरान और हदीस से साबित है। नबियों के बाद सहाबा के बाद किसी का वाकई मोमिन होना या मोमिन नहीं होना ये किसी कुरानी आयत से या हदीस से साबित नहीं। हां उनके अहवाल अच्छे होंगे, उनके आमाल अच्छे होंगे तो फैसला अच्छा होगा। अगर आमाल और अहवाल और सिफात खराब होंगे तो फैसला भी खराब होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बज़ाहिर कोई शख्स खराब हो लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो ज्यादा मकाम रखता हो, उसके दिल का हाल अच्छा हो, दिल में कोई बुराई ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। और यूं भी मुमकिन है कि बज़ाहिर किसी के अहवाल अच्छे हो लेकिन कल्ब और दिल के एतबार से वो खराब हो और अल्लाह की नजरों से गिरा हुआ हो, ये भी मुमकिन है। लिहाजा उम्मत जो बात कहेगी वो यूं होगी कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के औलिया में वलियों में बहुत बड़े वली गुजरे हैं और इंशाअल्लाह वो अल्लाह के दोस्त और बड़े वली थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कुछ बातें और आपकी कुछ सीरत जो बहुत अहम है हर मुसलमान को मालूम करके रखना जरूरी है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का कैसा मकाम था, उनका कैसा तकवा और आमाल सालिहा में कितनी पुख्तगी थी और वो सुन्नत और शरीयत पर किस दर्जा कायम थे। आप 470 हिजरी को जीलान या गीलान नामी गांव में पैदा हुए जो ईरान के एक सूबे में शुमाली हिस्से में मौजूद है। आप वहां पैदा हुए और जिस वक्त आपकी विलादत हुई उसी वक्त कुछ ही देर पहले रमजानुल मुबारक का चांद निकला। तो यूं समझिए कि 470 हिजरी को ماہ مبارک کا پہلا چاند نکلا اور کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چاند نکلا ہے ماہ مبارک کا اور دوسرا چاند نکلا ہے شریعت مطہرہ کا, اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے, تو بات غلط نہیں ہوگی. 470 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آپ کے والد ابو صالح عبداللہ جنگی دوست ہیں. جنگی دوست فارسی میں فوجی کو کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے والد ایک بڑے فوجی تھے اور فوج کے جو اس کے جو شعبے ہیں اس میں وہ کام کرتے تھے, لیکن بہت بڑے نیک شخصیت تھے. آپ کی والدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت سید ابو عبداللہ صالح الزاہد ہیں, یعنی والدہ کا جو نام ہے ام الخیر امت الجبار فاطمہ ہے, اور آپ کے نانا ابو عبداللہ السومعی الزاہد ہیں. اور لکھتے ہیں کہ آپ بھی پیدائشی ولی تھے, آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد اور آپ کے نانا سب اللہ کے اولیاء تھے, اور آپ کے والد محترم کا تقویٰ بہت مشہور رہا ہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف سے آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک طرف سے حسنی اور صرف 10 واسطوں سے آپ کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے, اور والدہ سے حسینی ہے, اسی کو ذو النورین کہا جاتا ہے اور نجیب الطرفین کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے شرافت اور سعادت ملی ہوئی تھی. جیسا کہ کہا گیا کہ آپ پیدائشی اور مادرزاد ولی تھے, جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی والدہ کہتی ہیں رمضان المبارک میں دن میں یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کبھی آپ نے میرا دودھ نہیں پیا, حالانکہ بچہ پیدا ہوا ہے ایک دن کا دو دن کا, اور مہینہ گزرے گا تو یہ بچہ پورے ایک مہینے کا ہوگا. اس ایک مہینے میں یہ چھوٹا سا بچہ ہے, دن کے وقت میں جس وقت سے جس وقت تک روزہ رکھا جاتا ہے اس بچے نے کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا. تو اللہ نے اس طریقے سے پرورش کرائی اور نہایت صالح ماحول میں بہترین ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد مرحوم انتقال فرما گئے. علماء لکھتے ہیں گویا آپ کی ولادت بھی غیر اختیاری سنت پر ہوئی کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے. آپ کی والدہ باحیات تھی, آپ کے دادا تھے اور آپ کے چچا تھے, تو غیر اختیاری سنت آپ کی ادا ہوئی, اور پھر آپ اپنی والدہ کی تربیت میں پرورش پانے لگے, یہاں تک کہ جب آپ 18 سال کے ہوئے سن 488 ہجری 18 سال کے ہوئے تو अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में पहुंचे और लिखते हैं, जब आपकी पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा 60 साल की हो चुकी थी, तो 18 साल परवरिश पाई। जब 18 साल के हो गए तो वालिदा की खिदमत में पहुंचे और अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए इजाजत मांगी कि आप मुझे इजाजत दें, मैं बगदाद जाकर इल्मे दीन हासिल करूं और वहां जो अल्लाह वाले हैं, औलिया हैं, उनकी जियारत करूं। बगदाद जाकर इल्मे दीन हासिल करूं और वहां जो अहलुल्लाह हैं, अल्लाह के औलिया हैं, उनकी जियारत करूं। ये सुनकर आपकी वालिदा रो पड़ी और अंदर गई, 80 दीनार लेकर आई। रोते हुए कहा, तुमने दो बातें बताई हैं इसलिए मैं तुमको इजाजत दे रही हूं। एक तो इल्मे दीन हासिल करने की बात कही, उससे मैं रोक नहीं सकती, और दूसरी बात बुजुर्गों की जियारत और उनकी खिदमत की बात तुमने कही है, ये भी एक ऐसा अजीम शान काम है, ऐसी अजीम शान खिदमत है, मैं उससे भी रोक नहीं सकती, मैं इजाजत देती हूं। ये कहकर 80 दीनार लाई और कहा कि ये तुम्हारे वालिद की छोड़ी हुई अमानत है, 40 दीनार तुम्हारे हैं और 40 दीनार तुम्हारे भाई के हैं, जहां तक मेरा अपना हिस्सा है मैं उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेती, अपना हिस्सा छोड़ दिया और दो भाइयों में 40-40 दीनार की तकसीम कर दी और 40 दीनार दिए और बगल के नीचे एक थैली में सीकर एक गुदड़ी बना दी और बगल के नीचे उसको सी दिया और एक नसीहत की कि बेटा जब तुम जा रहे हो तो एक आहद करो मेरे साथ कि कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो अपनी वालिदा के हाथ पर आहद किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। फिर वालिदा बाहर आई और रोते हुए रुखसत की और ये कहा कि तुमने दो बड़े मकसद बताए हैं, लिहाजा अब तुम्हारा ये चेहरा मैं मैदान हशर ही में देखूंगी, कयामत ही में देखूंगी, अब फिर तुम वापस ना आना और जिस मकसद के लिए जा रहे हो उस मकसद में कामयाबी हासिल करना। उलमा लिखते हैं कि जिस वालिदा ने अपनी गोद में बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार और लाड़ के साथ पाला हो, उसकी दिली हालत क्या होगी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसका अंदाजा करना मुश्किल है। लेकिन अपनी मोहब्बत को इल्मे दीन पर कुर्बान कर दिया और साफ कहा, अब ये चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगी, मैदान हश्र में ही देखूंगी। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह अपने वतन से, अपने गांव से निकलते हैं तो एक छोटा सा काफिला बगदाद जा रहा होता है, उसके साथ शामिल हो जाते हैं। कहते हैं, हमारा ये काफिला हमारे वतन से निकला और हमदान पहुंचा, ये भी ईरान ही का एक शहर है। फिर वहां से निकलकर एक जगह पहुंचा जिसे तरतंग कहते हैं और वहां से कुछ ही फासले पर पहुंचा था तो जंगल से 60 सवार आए, डाकू आए और पूरे काफिले को घेर लिए और पूरे काफिला को लूटने लगे। उनमें से एक आदमी आपके पास आया, ये बातें हजरत ने ही लिखी हैं कि एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि ऐ शख्स तू बता तेरे पास क्या है। मैंने कहा कि मेरे पास 40 दीनार है, हंसकर चला गया। फिर कुछ ही देर में एक दूसरा शख्स आया उसने कहा ऐ लड़के तेरे पास क्या है? तो आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। तो वो भी और जो पहले पूछा था वो दोनों आपको लेकर अपने सरदार के पास गए और सरदार के सामने पेश किया कि ये यूं कह रहा है। उसने भी बात दोहराई, कहा कि बताओ क्या है तुम्हारे पास? कहा कि मेरे पास 40 दीनार हैं और वो बगल के नीचे जो गुदड़ी है, जो थैली है, उसमें रखे हुए हैं। अब उसने कहा कि देखो, तो देखा तो वाकई वो गुदड़ी थी, वो थैली थी। उसको फाड़ने का हुक्म दिया, फाड़ने के बाद देखा तो उसमें 40 दीनार थे। अब डाकुओं के सरदार ने कहा अगर तुम ये बात ना बताते तो हमें कभी मालूम ना होती, तुमने ये बात क्यों बताई? खामोशी इख्तियार क्यों नहीं की या साफ कह देते मेरे पास कुछ नहीं है? तो आपने फरमाया जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी वालिदा ने नसीहत की थी और ये अहद लिया था कि हमेशा सच बोलना, तो मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं झूठ बोलूं। और जब ये पहला मौका ही मेरा झूठ के साथ हो जाएगा, आइंदा मैं सच पर कायम नहीं रहूंगा। ये बात आपने साफ कही तो डाकुओं का सरदार रोने लगा और ये कहा कि तुम अपनी वालिदा और अपने माँ के साथ किए हुए अहद पर कायम हो और मैं मेरे अल्लाह के साथ किए हुए अहद पर कायम नहीं हूं। मैंने अपने अल्लाह के साथ अहद किया था कि अल्लाह की वहदानियत पर, उसकी कुदरत पर ईमान ले आने का और आमाल सालिहा का, चोरी वगैरह, डकैती वगैरह ना करने का, लेकिन मैं कायम नहीं रहा। ये सुनकर रोया और वो भी और पूरे डाकुओं के 60 के 60 सवारों ने आपके हाथ पर तौबा की और गुनाहों से, चोरी से बाज आ गए। और कहते हैं उनमें से हर एक भी अपने 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 मकाम पर अल्लाह का वली हुआ, एक एक भी नेक हुआ। इधर हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद पहुंचते हैं और ये सन 488-480 पर 8 हिजरी का ये वाकिया है। आप पहुंचते हैं बगदाद, वहां एक मदरसा है, मदरसे निजामिया, जो उस वक्त बहुत मशहूर मदरसा रहा है। और अजीब इत्तिफाक, जिस साल आप बगदाद पहुंचे हैं उसी साल बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम दीन इमाम गजाली रहीमहुल्लाह बगदाद छोड़कर चले गए थे। उसी साल बगदाद छोड़कर चले गए और अल्लाह ने उसी साल आपको बगदाद भेजा। उलमा लिखते हैं बगदाद अल्लाह के एक वली से महरूम हुआ, अल्लाह ने दूसरा वली दे दिया। आप पहुंचते हैं मदरसे निजामिया में, दाखिल होते हैं और दाखिल होकर पढ़ना शुरू करते हैं और हर किताब पूरी मेहनत के साथ और हर फन को, फन के जो माहिर असातिजा होते हैं उनसे हासिल करते हैं। आप इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फिका, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म लुगत, जो उलूम हैं, जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, वो सारे उलूम हासिल करते हैं। कहते हैं मैं सुबह से शाम तक पढ़ता और शाम को जब रात शुरू होती तो मैं जंगलों में निकल जाता। मेरे पास कोई जायद कपड़ा नहीं, छोटा सा एक इमामा बांधता था और सूफी जुब्बा था, मेरे पैर पर चप्पल भी नहीं होती। मैं जंगलों में निकल जाता और अपने सबक का तकरार करता और यूं ही फिरा करता और दरियाए दजला के किनारे आकर जो घास है, दरख्त के पत्ते वगैरह हैं, उनको खा लेता। इस तरीके से खाकर अपना कुछ पेट भर लेता। कैसी मशक्कत वाली जिंदगी उन्होंने उठाई और कैसी पुर मशक्क जिंदगी उन्होंने गुजारी हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि आपने इतनी मेहनत इतनी मशक्कत उठाई। अल्लाहु अकबर, बहुत तफसील से आपकी सीरत और तारीख की किताबों में वाकियात लिखे हुए हैं। आप अब्दुल कादिर जेलानी ऐसे ही नहीं बने, आपने जो मेहनतें की हैं उनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप मदरसे निजामिया में पढ़ते हैं, फिर वहां से बगदाद में एक और मदरसा है मदरसे मामूरा, वहां आपके शेख होते हैं, फिर वहां आकर बकिया तालीम हासिल करते हैं, फिर जब फारिग होते हैं तो मदरसे निजामिया में चंद साल पढ़ाते हैं, फिर अपने शेख के मदरसा मदरसे मामूरा में आते हैं, वहां आकर बकिया तालीम पूरी करते हैं और फिर उसी मदरसे मामूरा ही में आप पढ़ाने लगते हैं। उसी मदरसे मामूरा ही में आपकी कब्र मुबारक भी बनी हुई है, वहीं आपकी तदफीन भी हुई है। अबुल फजल अहमद बिन सालेह कहते हैं, जब आप मदरसे निजामिया में पढ़ रहे थे, तालिब इल्मी के दौरान का वाकया, जब आप मदरसे निजामिया में पढ़ रहे थे तो आपने तकदीर पर बहस करना शुरू की, तकदीर पर कलाम करना शुरू किया, तकदीर को समझा रहे थे। जब आप अपने साथियों को समझा रहे थे उसी दौरान एक बड़ा सांप छत के ऊपर से नीचे गिरा। जैसे ही सांप नीचे गिरा आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए थे वो भाग खड़े हुए वहां से दूर हो गए, लेकिन आप बैठे रहे। वो सांप आपके कुर्ते के अंदर दाखिल हो गया और पूरे जिस्म का चक्कर लगाते हुए गर्दन को लिपेट कर फिर कुछ देर यूं ही रहा, फिर आपके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर आपके सामने रहा फिर उसके बाद चला गया। और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्ला टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल इस्तेकामत के साथ बैठे हुए थे। जब वो चला गया तो लोग आए और आपसे पूछने लगे कि क्या माजरा पेश आया, क्या बात हुई। तो कहा कि जब सांप आकर मेरे बदन में दाखिल हुआ कुर्ते के अंदर और गर्दन से लिपेटता हुआ बाहर आया, मैं सोचा कि मैं तकदीर पर चूंकि कलाम कर रहा था, मैं सोचा कि जो कुछ होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता हिलता नहीं है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। मैं सोचा कि अगर मैं इस वक्त इस्तेकामत के साथ ना रहूं तो फिर मेरे जाहिर और मेरे बातिन में मुआफ़क़त नहीं रहेगी और मेरे कलाम में और मेरे फ़ेल में मुखालफत हो जाएगी, कलाम कुछ हो जाएगा और मेरा हाल कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं अल्लाह पर भरोसा करके बैठा रहा। सांप सामने आया और कहा कि अल्लाह ने आपको इस्तेकामत दी, जितना आपको मैंने इस्तेकामत के साथ पाया ऐसे मैंने 70 औलिया को आजमाया है, लेकिन आप ज्यादा इस्तेकामत के साथ थे, आपके अंदर जुम्बिश मामूली सी हरकत भी नहीं हुई। यानी दूसरों में मामूली सी जुम्बिश तो हुई लेकिन आप में मामूली सी जुम्बिश और हरकत भी नहीं हुई, आप बड़े इस्तेकामत के साथ रहे। ये उस वक्त का वाकया है जब आप पढ़ रहे थे और मदरसे निजामिया में वहां तालीम हासिल कर रहे थे, तकदीर का मसला अपने साथियों को समझा रहे थे। लिहाजा तकदीर पर ईमान, जो ईमान के 7 अज्ज़ा हैं, 7 हिस्से हैं, उनमें से एक मुस्तकिल हिस्सा है, एक मुस्तकिल जुज है। आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाथ बादल मौत। ये सात बातें हैं, उनमें से एक अल क़द्र है कि खैर हो या शर अल्लाह ही की तरफ से उसका फैसला होता है। हम में से हर मुसलमान इसको बचपन में पढ़ता है और हमेशा याद रखता है, लेकिन हालात आते हैं तो हमारे पैर ठहरते नहीं और हमारे पैरों में तजलजल आता है, इस्तिकामत नहीं रहती। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह ने अपने कौल और अपने अमल से बता दिया कि जो कौल है वही अमल होना चाहिए, जो जाहिर है वही हमारा बातिन होना चाहिए। इसी तरह से आपने जो पढ़ाई पढ़ी, इतनी मजबूती के साथ आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की कि तमाम उलूम फ़नून में उस वक़्त आपका कोई सानी नहीं था और कोई नज़ीर आपकी नहीं थी, कोई मिसाल आपकी नहीं थी। उसी ज़माने में लिखते हैं कि आप फारिग हुए और असबाक पढ़ाने लगे, एक सबक तफसीर का, एक सबक हदीस का, एक सबक फिकह का, जोहर के बाद तजवीद का सबक होता था, बकिया वक्त जो मिलता फतवा लिखने में उसको लगा लेते, खर्च करते, दिन भर अपने आप को मशगूल रखते इल्म दीन को पढ़ने और इल्म दीन को पढ़ाने में। आपकी मजलिस में एक मरतबा एक शख्स ने किरात पढ़ी, एक आयत करीमा पढ़ी, आपने उसी वक्त उस आयत की 40 तफसीर की और हर तफसीर को दलील के साथ बयान किया और हर दलील की सनद भी बयान कर दी कि ये जो मेरी दलील है उसकी ये सनद है, मैंने ये दलील कहां से सुनी, उन्होंने कहां से सुनी, उन्होंने कहां से सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर कुरान की आयत होती तो उसको आप पेश करते। बहरहाल हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहिमहुल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े वली और अल्लाह के दोस्त गुजरे हैं और उम्मत ने इत्तेफाक किया है, आप अल्लाह के वलियों में एक बड़े वली थे। आपके हालात हैं और भी बाज़ हालात हैं, इंशाअल्लाह उनको आइंदा जुमा बयान करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ये याद रखनी चाहिए कि सिर्फ मीठी चीजों पर और अच्छी हालतों पर मोहब्बत का दावा नहीं है। मीठी चीजों पर और अच्छी हालतों पर मोहब्बत का दावा नहीं है, बल्कि जैसे आपने जिंदगी गुजारी है सुन्नत और शरीयत के मुआफिक, वो जिंदगी हम गुजारें या उसके मुआफिक हम गुजारें तो इंशाअल्लाह हमारा ये दावा सच्चा साबित होगा, वरना हमारे कौल में अमल में जाहिर और बातिन में मुनाफ़क़त होगी और मुआफ़क़त नहीं होगी। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला आपकी सीरत पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाएं।